वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। गुम्मटसार जीव कांड का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंदु वर्णिमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम् जीवस्य परोवणम् वोच्छम्। बीस प्ररूपणाओं के अंदर पांच प्ररूपणाओं का अच्छे से आपने अभिप्राय समझ लिया है, अध्ययन कर लिया है, और मार्गणा नाम की जो प्ररूपणा है उसे 14 भागों में विभक्त किया है, अर्थात पांच मार्गनाओं के साथ इनको 14 की संख्या में गिना है, तो 14 × 5 = 19 हो जाएंगी, और आगे एक उपयोग प्ररूपणा आएगी तो 20 प्ररूपणाएं हो जाएंगी। यहां मार्गना का आपने अर्थ जाना, जहां जीवादि तत्वों की खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, वह है मार्गना, और उस मार्गना के 14 भेद बताए। 14 भेदों में से सबसे पहले गति, तो गति मार्गना का भी आपने लक्षण जाना, और गति मार्गना की 4 भेद भी हैं। कौन कौन से? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सर्वप्रथम नरक गति की ओर चलते हैं। नरक गति को पहले आचार्य देव ने इसलिए बताया कि आप नरक के दुखों से डरें, पापों को करने से डरें, और नरक में जाने का भाव ही कभी ना होने पाए, और धीरे धीरे चल करके मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया में आना है। तो पेज नंबर है 53 और गाथा नंबर 47। देखो ये स्वाध्याय थोड़े दिन चलेगा, इसलिए आप सब लोगों में से जिनके पास भी पुस्तक नहीं हो वो पुस्तक हस्तिनापुर से, जम्बूद्वीप से जरूर जरूर मंगवा लें पुस्तक को। और व्याकरण की पुस्तकें भी कुछ लोगों के पास पहुंच चुकी हैं जो, तो उनको भी आप अपने यहाँ सुरक्षित रखिएगा, और जो छोटी व्याकरण आपको पढ़ाई जा रही है उसको अध्ययन कीजिए, जिन्हें आगे आगे जो भी व्याकरण जैसे कातंत्र रूपमाला चल रही है तो प्रकाशित होने के लिए गई है, और प्रकाशित होकर के आने पर तुरंत आप सबको भेजी भी जाएगी, लेकिन गोमट सार जीव कांड सार की पुस्तक जिनको भी जरूरत है वो मंगा लें। कह रहे नहीं मिल रही है कुछ, कोई कह रहे हैं सबको मिलेगी क्योंकि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उपलब्ध है, तो इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं वहां के पते पर। चलिए अब गाथा नंबर 47, नरक गति का लक्षण। नरमन्ति जदो निच्चम्
दव्विखेते यकाल भावेया।
नरमन्ति जदो निच्चम् दव्विखेते यकाल भावेया। अन्नो नेहि यजम्हा तम्माते नारिया भणिया। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। नरमन्ति जदो निच्चम् दव्विखेते यकाल भावेया अन्नो नेहि यजम्हा तम्माते नारिया भणिया। नरमन्ति यतो नित्यं द्रव्ये क्षेत्रे च कालभावे च अन्योन्यैश्च यस्मात् तस्मात् ते नारता वणिताः। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं भी रमण नहीं करता, रमता नहीं, वहां प्रीति नहीं कर पाता तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होता, उसको कहते हैं नारत, नारकी, नारिया भणिता। तो एक शब्द नारत भी है और एक शब्द नारद भी है। तो नारद है यानी कि रथ कहीं नहीं होती जहां पर किसी भी तरह से प्रीति नहीं हो पाती। देखो अन्य गतियों में तो क्या है कि जैसे तिर्यंच गति है, वहां जीव जाना नहीं चाहता लेकिन जाने के बाद वहां से मरना नहीं चाहता, छूटना नहीं चाहता। लेकिन नरक एक ऐसी गति है कि उसमें कोई जीव जाना भी नहीं चाहता और वहां रमना भी नहीं चाहता। यानी वहां जाने वाला हर नारकी ये चाहता है कि कैसे करके मैं यहां से छूट जाऊं, कैसे मैं कर लूं, मेरा काल मरण हो जाए, मुझे यहां से कोई उठा ले जाए, मैं क्या खा लूं, विष खा लूं या कैसे करके आत्मघात कर लूं। लेकिन वो प्रयास वहां पर कोई भी सफल नहीं होते और नरक की धरती ऐसी है जहां किसी को भी प्रीति नहीं हो पाती। तो कहा शरीर और इंद्रियों के विषयों में उत्पत्ति, शयन, विहार, उठने बैठने आदि के स्थान में, भोजन आदि के समय में अथवा और भी अनेक अवस्थाओं में जो स्वयं अथवा परस्पर में प्रीति यानी सुख को प्राप्त ना हो उनको नारद कहते हैं। और इस गाथा में जो च शब्द है उससे उसका दूसरा भी अर्थ निकाला है, जो नरक गति नाम कर्म के उदय से हो उनको अथवा नरान कायन्ते इति नारक, जो मनुष्यों को क्लेश पहुंचाते हैं उनको नारक कहते हैं। क्योंकि नीचे की सातों भूमियों में अधोलोक के अंदर जो सात भूमियां हैं वो सात नरक हैं। उन सातों ही भूमियों में रहने वाले नारकी निरंतर स्वाभाविक रूप से शारीरिक, मानस, आगंतुक तथा क्षेत्र जन्य इन पांचों प्रकार के दुखों से हमेशा दुखी रहते हैं। एक क्षण भी नरक में ऐसा नहीं रहता कि कभी सुख का अनुभव भी कर लें, लेश मात्र भी। बस केवल ऐसा कहा जाता है कि जब मध्यलोक में तीर्थंकर भगवान के जन्म होते हैं तो क्षण भर के लिए, सेकेंड मात्र के लिए एक क्षण को नरक में भी कुछ शांति हो जाती, लेकिन तुरंत क्षेत्र जन्य है वहां, तुरंत उनको फिर वही मार काट वही करनी ही पड़ती है। कोई नारकी चाहे कि मैं किसी को ना मारूं तो उसके ऊपर इतने प्रहार होते हैं कि वह किसी भी हालत में बैठ नहीं सकता। इसलिए परस्पर में परस्परो दीरित दुखा, आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा ना, परस्परो दीरित दुखा, जहां परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न कराते रहते हैं। और अगर उसमें कोई असुर कुमार आकर के मिल जाते हैं फिर उनके दुखों की क्या कहना, फिर तो दुख पर दुख, दुख पर दुख, अति अति दुख का सामना ही करना पड़ता है। क्योंकि जा करके वो बिड़ाते रहते हैं तो जितना मार काट होनी चाहिए उससे और ज्यादा करने में निपुण हो जाते हैं, क्योंकि शत्रुता का भाव एकदम उनके अंदर जागृत होता रहता है। यही बात आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में जो षटखंडागम की टीका है उसके अंदर भी नारकियों का एक बड़ा अच्छा विवेचन किया है, जिसको पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने भी षटखंडागम की सिद्धांत चिंता मणि टीका के अंदर कोट किया है। वे कहती हैं कि अथवा निर्गतोयम पुण्यम येभ्यस्ते निर्याह तेषां गति निरय गति, जहां कहते हैं कि जहां जीव परस्पर में पुण्य प्रीति को नहीं प्राप्त होती और निकल गया है पुण्य जिनमें से, यानी पाप कर्म के उदय से ही तो नारकी होते हैं, तो निकल गया है पुण्य जहां से जिनमें से वे कहलाते हैं निरत, निमाने निकल गया है, रहे माने पुण्य को कहा कि निर्गतोयम पुण्या येभ्यः ते निर्याह तेषां गति निरय गति, निकल गया है पुण्य जिनमें से वे निरत कहलाते हैं तथा उनकी गति निरत गति भी कहलाती है। तो आप समझो कि नारक एक शब्द है, एक नारत है, एक निरत है और एक निरत गति है। तो इन दोनों को आपको समझना है, कुल मिलाकर सब में यही है कि जहां पापों की बहुलता होती है, पाप करने से ही जीव जाता है निरंतर, जहां पाप को कमाता रहता है वह है नरक गति। तो वहां पुण्य की बात ही नहीं है, वह पुण्य से तो कोई भी नरक में नहीं जाएगा। तो इसलिए नरक गति में कभी भी जीव एक दूसरे में रमते भी नहीं, अपने में भी नहीं रमते। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे प्रथम नरक तक जा सकते हैं। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके राजा श्रेणिक ने नरक गति को प्राप्त किया, तो नरक जाने वाला सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिसने पहले नरक की आयु को बांध लिया और उसके बाद में उसका उसे सम्यक दर्शन हुआ, और वह सम्यक दर्शन भी अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है तो मरते समय वो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो छूटता ही नहीं, वो मरने तक भी नहीं छूटता। तो उस सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि बधाई उसका आप हो चुके हैं, तो पहले नरक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। सातवें नरक की आयु का बंद किया राजा श्रेणिक ने, लेकिन भगवान महावीर के समोसरण में भक्ति करते करते उन्होंने अपने नरक की आयु को सातवें नरक की आयु से पहले नरक की आयु में अपवर्तित कर लिया, कम कर लिया। तो ये आपको नरक की बात बताई। छह ढाला के अंदर भी पढ़ते हैं कि तहां भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध शोणित वाहिनी, क्रमि कुल कलित देह दाहिनी। यानी जितने घृणित पदार्थ हैं और जितने अशुभ पदार्थ हैं सब के सब नरक में आते हैं, जितने अधिक से अधिक दुख हैं सब नरक में उदय में आते हैं, जितने अधिक से अधिक रोग हैं वे सब नरक में उदय में आते हैं। आपने कभी रोगों की संख्या सुनी है? मैंने बताया भी है 5,68,99,584 रोग होते हैं। बोलो कितने रोग हो गए? आपके कितने हैं? सिर भी दुखता है, पेट भी दुखता है, पैर भी दुखता है, आंख भी दुखती है, तो लगता है अरे मेरे समान दुखी, मेरे समान बीमार कोई नहीं है। लेकिन भव्यात्माओं, आचार्यों ने और केवल ज्ञानियों ने जिन रोगों की संख्या बताई उनके आगे तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। मनुष्य गति में रहकर आप कितना धर्म ध्यान कर सकते हैं, उन रोगों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इन रोग उन रोगों को थोड़ा निग्लेक्ट करके भी जो धर्म ध्यान करते हैं। आज मैं देखती हूँ कि ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि देखो शरीर रोगों का घर है, लेकिन फिर भी उस शरीर से काम लेकर के एक नौकर की तरह से शरीर से काम लेकर आज उन्होंने 90 साल की उम्र तक किस प्रकार से तपस्या में अपने शरीर का कितना बड़ा सदुपयोग किया है। तो उन रोगों से लड़ने के लिए भी, उन रोगों की शांति के लिए भी धर्म ध्यान आवश्यक है। कभी भी आप देख लो सिर में दर्द है लेकिन भगवान की स्तुति करते करते भान नहीं होता। तो उन रोगों की, संपूर्ण रोगों की उत्पत्ति उदय नरक में आता है। ये नरक गति का लक्षण इसीलिए बताया है, इसलिए नहीं कि केवल आप मार्गणाओं में गति मार्गणा और गति मार्गणा में सबसे पहले नरक गति का वर्णन सुन लें, केवल याद कर लें, केवल परीक्षा में लिखकर नंबर केवल प्राप्त कर लें। नहीं, केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है। नरक गति को बताने का मतलब यह है कि उसके दुखों को जानकर उन दुखों को प्राप्त करने की कभी भावना भी न बने, और भावना मतलब उन दुखों को प्राप्त करने के कारण भी कभी जुटाए ना, पाप ना करें, व्यसन ना करें, कषाय ना करें, तो आपकी नरक गति छूट सकती है। ऐसे मार्गों के अंदर आप आगे चलते रहेंगे। और अब हम चलते हैं